Chez Telly. Chez Telly. एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सुधी श्रोताओं को धनराज शंभु का प्यार भरा अभिवादन। प्रौद्योगिकी के माध्यम से विदेश के हमारे श्रोताओं को भी सादर नमन। श्रोताओं, हिंदी भाषा, साहित्य, रचना एवं रचनाकारों से परिचित कराना सचिवालय का परम उद्देश्य है। इस कड़ी में हम विश्व के कोने कोने से विद्वानों को MBC के माध्यम से रेडियो पर बुलाते हैं और उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमें हर्ष है कि आज हमारे समक्ष न्यूजीलैंड की विदुषी श्रीमती सुनीता नारायण जी पधारी हुई हैं। उनके सानिध्य में हमारे देश के साहित्यकारों को उनसे मिलने और विचार विनिमय करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। तो आइए हम इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं और उनका श्री गणेश करते हैं। श्रीमती सुनीता नारायण जी, मॉरिशस MBC रेडियो के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आप जानी मानी विदुषी हैं। हमें खुशी होगी यदि आप अपना परिचय अपने मुख से कुछ सुनाएं।
धन्यवाद धनराज शंभु जी, आपको भी मेरा नमस्कार और सभी मॉरिशस वालों को, रेडियो सुनने वालों को, मेरे दोस्तों को, परिवारों को बहुत बहुत प्रेम भरा प्रणाम। मैं वेलिंगटन न्यूजीलैंड में रहती हूँ और वेलिंगटन शायद आपको मालूम होगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी है। मैं वहाँ 1987 से रह रही हूँ और फिजी मूल से हूँ। आपकी तरह फिजी में हमारे पूर्वज आए थे और फिजी में सबसे पहला भारतीय समूह 14 मई 1879 में पधारे। उसके बाद लगातार आना जाना रहा और ये प्रथा तो 1916 में ख़त्म हुई और ख़त्म होते होते तो 1920 हो गए। और इसके दौरान लगभग 60,965 भारतीय फिजी आए और उसमें से लगभग दो तिहाई फिजी में रह रहे और लगभग एक तिहाई लौटे। तो दो तिहाई रुके और फिजी में अपना घर बनाया। बस जब मॉरिशस में रहती हूँ तो देखती हूँ कि बिल्कुल फिजी की तरह है और ऐसे लगता है कि मैं अपने परिवार में आ गई हूँ।
बहुत अच्छी बात है। और आप कि देश का इतिहास और आपके परिचय के समान हमारे देश में भी स्थिति ऐसी ही है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, आप फिजी मूल निवासी हैं तो कृपया वहाँ की हिंदी और वहाँ की भाषा, वहाँ लोग शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं, कृपया इस पर कुछ बोलिए।
अगर आपको पता नहीं तो फिजी में हमारी फिजी हिंदी है।
अच्छा, अच्छा।
और जैसे आप यहाँ क्रियोल भाषा जैसे बोल लेते हैं, मेरा समझ में नहीं आता, कुछ कुछ वर्ड समझ में आ जाते हैं और वैसे हमारी फिजी हिंदी है लेकिन उसको हम क्रियोल नहीं कहते, उसको हम फिजी हिंदी या फिजी बात कहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं फिजी हिंदी में कुछ बोलूं।
जरूर जरूर बोलिए
जी। धन्यवाद। हमारा नाम सुनीता नारायण है और हमारे पैदाइश फिजी में भय है।
अच्छा।
और फिजी में हमारे पूर्वज लोग आइन रहा 1879 में और हमार आजा प्रताप घर से आइस रहा और हमार पर नाना उनाव के आसपास से आइन रहा।
अच्छा।
तो उस समय से सब कोई फिजी में रहे लेकिन और आजकल हम लोग के बहुत अच्छा अपनी फिजी हिंदी बन गए हैं और फिजी हिंदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाती है कॉन्वर्सेशनल तौर पर।
अच्छा।
और जो वहाँ के आदिवासी बच्चे भी हैं उनको भी ये कॉन्वर्सेशनल हिंदी पढ़ना है ताकि वो बोलचाल की भाषा सीख ले। और जो हमारे भारतीय बच्चे हैं उनको आदिवासियों की भाषा जो इतौकी बोलते हैं और आदिवासी भाषा में जैसे नमस्कार को या ग्रीटिंग को हम बोलते हैं नीसाम्बोला। अच्छा। निसांबुला का मतलब है हेलो हाय बोंजो नमस्ते ऐसे। और फिजी के स्कूलों में पाठ्यक्रम में 1950s में हिंदी आ गई थी और उसके तब से लगातार कई बहुत सारी प्रगतियां हुई। और 1920 में एक स्वामी आए थे, स्वामी वशिष्ठ मुनि, उन्होंने बहुत काम किया था और जगह जगह पर स्कूलों की स्थापना की भी प्रबंध की थी। लेकिन ऐसे हुआ कि जो देश के प्रशासनिक लोग थे उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया, तो अच्छा। एक ही साल वो रह पाए। फिर 1920s में जो समाज ग्रुप था, आर्य समाज ग्रुप फिजी में, उन्होंने पंडित अमित चंद्र विद्यालंकार को बुलाया उन्होंने, और उनका काम ही एक शिक्षक था, वो एजुकेटर थे और उन्होंने कई पोथियाँ बनाई, जैसे कि हिंदी की पहली पुस्तक, दूसरी पुस्तक ऐसे तक। और जब हम स्कूल गए तो हम भी वो पुस्तकें पढ़े हैं। आजकल तो चेंज हो गया है सब कुछ, लेकिन वो पुस्तकें फिजी के लिए बहुत बहुत मूल्यवान थे। बहुत अच्छा, मूल्यवान थे।
मैं यह जानना चाहता था कि वहाँ के पाठ्यक्रम में जो सरकारी तौर पर पढ़ाई जाती है, वहाँ की पुस्तकों में कौन सी पुस्तक आप प्रयोग करते हैं, यानी भारत की पुस्तकें आती है या अन्य देशों की, या वहीं की बनी हुई पुस्तकें?
वहीं की बनी होती है। जैसे मैंने कहा, जब पंडित विद्यालंकार ने बनाया तो वहीं के आधार पर बनाया, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ भारत का था। और अभी जो सामग्रियां होती है वो सभी फिजी पर आधारित है, लेकिन केवल फिजी पर ही नहीं, वो बाहर की भी कहानियाँ आती है। और जैसे साहित्य में तो प्रेमचंद, सबसे मुंशी प्रेमचंद को तो कौन नहीं जानता, उनको पढ़ाई जाती है। यूनिवर्सिटीज़ में भी हिंदी पढ़ाई जाती है मास्टर्स तक की। और आज एक यूनिवर्सिटी में इसी साल मेरे ख्याल से पीएचडी भी शुरू हुआ है हिंदी।
अच्छा,
में
बहुत अच्छी बात है।
तो आपको पता हो गया कि प्राइमरी स्कूल से, प्राथमिक दिनों से यूनिवर्सिटीज़ तक की पढ़ाई में हिंदी शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इस पर बहुत ज़्यादा हिंदी पर ध्यान नहीं देते हैं, और सभी लोग अंग्रेज़ी की तरफ भाग रहे हैं। और जो भारतीय हाई कमीशन है, वहाँ पर उच्च आयोग है, उनकी भी बहुत मदद होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, और जो अपना शिक्षा मंत्रालय है वो बहुत काम करते हैं इस पर।
अच्छी बात है। यहाँ भी जैसे आप के लिए दुख की बात है कि वहाँ के लोग, वहाँ के परिवार हिंदी से उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ कुछ यह समस्या आ रही है। लेकिन यहाँ बहुत पहले से, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक, पीएचडी तक, काफ़ी दिनों से यहाँ पर, काफ़ी सालों से यहाँ पर पढ़ाई होती है। तो अब मैं यह जानना चाहूँगा हमारे श्रोताओं के लिए कि वहाँ पर रचनाकार लोग हैं जो अपनी पुस्तक लिखते हैं, तो उस पर कुछ जानना चाहते हैं कि वहाँ के लेखक, कवि आदि क्या करते हैं, क्या लिखते हैं।
ये पाठ्यक्रम वाली पुस्तकें
नहीं, पाठ्यक्रम के बाहर
जनरल साहित्य में भी
हाँ
बहुत सारे रचनाकार हैं। पहले तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो काफ़ी जो रचनाकार हुए, क्रिएटिव राइटर्स, वो अंग्रेज़ी में लिखते थे, और आजकल बहुत हिंदी में लिखने लगे हैं। और हमारे जो प्रधान उपन्यासकार है प्रोफेसर सुब्रमणि, उनको कौन नहीं जानता विश्व में, और वो फिजी हिंदी में उन्होंने लिखा है। और जो कई लोग हैं, जैसे उत्तरा गुरुदयाल है, वो आजकल की मॉडर्न राइटर है और वो हिंदी में लिखती है, और कई रचनाकार इस तरह के हैं जो हिंदी में लिखते हैं। मैं भी थोड़ी थोड़ी हिंदी में लिखती हूँ।
बहुत अच्छी बात है, आप भी रचनाकार है और मानिया जाए हिंदी को बढ़ावा दे रही है। अच्छा, आपने बताया कि फिजी से अब न्यूजीलैंड आ गई है, अब हम यह जानना चाहेंगे कि न्यूजीलैंड में हिंदी की स्थिति क्या है।
ओके, न्यूजीलैंड में आज लगभग 2% हिंदी बोलने वाले हैं. अच्छा. अभी 2018 का जो जनगणना हुआ था, हाँ, उसमें ऐसा ही देखा गया है, लगभग 50,000 हिंदी बोलने वाले हैं वहाँ पर. और उसमें फिजी हिंदी और हिंदी को लेकर मैं बता रही हूँ कि 2% है, उसमें आधा फिजी हिंदी है. तो मुझे गर्व लगता है जब मैं बोलती हूँ कि 2% है. तो हिंदी सुनने को मुझे रोज़ मिलता है.
अच्छा,
हम रोज़ सुनते हैं और काम वगैरह पर बहुत सारे भारतीय लोग हैं और भारत के तो कई प्रांतों से भारतीय आते हैं, हिंदी बोलने वाले बहुत हैं. और हमें अच्छा लगता कि काम पर ऑफिसेस में भी जब हिंदी वाले मिलते हैं तो हम तो हिंदी में ही बातें करते हैं, और फिजी हिंदी वाले मिलते तो फिजी हिंदी में बातें करते. तो लेकिन वहाँ औपचारिक तौर पर कुछ ऐसे नहीं है कि जो हमें शिक्षा क्षेत्र में कुछ मिले, लेकिन सरकारी तौर पर हमारे कई जो ऐसे इंफॉर्मेशन बुकलेट्स वगैरह होते हैं, सरकार द्वारा प्रकाशित होते हैं, उनको हिंदी और फिजी हिंदी में भी अनुवाद किया जाता.
अच्छा,
है तो इससे पता लगता है कि हाँ, सरकार भी इसको कुछ बढ़ावा देती है और उसको प्राथमिकता भी देती है. और मैं फिजी हिंदी का अनुवाद करती हूँ और फिजी हिंदी वाले अनुवाद शायद मैं और एक दो लोग और हैं, और हिंदी के तो बहुत है. तो ये औपचारिक तौर पर है और कोई विश्वविद्यालयों में नहीं है, कहीं पर नहीं है. और सप्ताह अंत हम हिंदी पाठशालाएं चलाते हैं.
अच्छा,
तो लगभग अभी न्यूजीलैंड में शायद 10-12 है जो अपने अपने तरह से चलाते हैं.
यहाँ भी बैठका के तौर पर सायंकालिक पाठशाला है और रविवार या शनिवार को हिंदी की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर भी मेरे ख्याल से ऐसा ही है. मैं जानना चाहता था कि वहाँ के रेडियो और टेलीविजन में
जी
हिंदी का बोलबाला है
बहुत. 24 आवर्स चलते हैं. रेडियो अपना है, रेडियो तराना है, ये 24 आवर्स चलते हैं. और टीवी अपना है जो हिंदी पर ही काफ़ी कुछ होता है वहाँ पर. तो ये हमारे आसपास में दिखने को मिलता है. और भारत से तो सभी टीवीज आते हैं और सब सीरियल्स एंड चैनल्स आते हैं. और न्यूज़पेपर ऐसे कोई हिंदी का नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पत्र या न्यूज़लेटर्स वगैरह निकलते रहते हैं. और जो बड़े बड़े जैसे बिजनेस हाउसेस है, वो भी हमारे जो त्यौहार वगैरह होते हैं उनको भी प्राथमिकता देते हैं और उस समय स्पॉन्सरशिप्स भी कर देते हैं.
अच्छा,
तो ये हमें एक मौका मिलता है अपना कल्चर, जो संस्कृति है, भाषा है और हिस्ट्री है, इसको लेकर हम बाहर जाएं और औरों को सिखाएं, अपने बारे में एजुकेट करें. और एक बात और शायद आपको अच्छा लगेगा कि अभी ऐसा है कि कोई कोई जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं वो हमें अप्रोच करते हैं कि हम कैसे करें. अब दिवाली आ रहा है और होली आ रही है, तो उनको पता है ये उनका कैलेंडर में हो गया. तो वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि व्हाट कैन यू डू फॉर अस. तो हम क्या करते हैं, जो बच्चे उस स्कूल में जाते हैं या उस स्कूल के पेरेंट्स वहाँ हैं, तो पेरेंट्स को हम लाइनअप कर देते हैं. लेकिन आज सभी पाठशालाओं में इतने सारे इंडियन बच्चे हैं कि उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से घुल मिल कर काम करते हैं. और मैं वेलिंगटन हिंदी स्कूल से जुड़ी हुई हूँ 30 साल से. और आज हम क्या करते हैं, हमने एक पहल निकाला था कुछ साल पहले, तो उसमें मैंने कुछ फंडिंग का अप्लाई किया था, तो वो मिल गया था गवर्नमेंट से.
अच्छा.
तो उस फंडिंग को लेकर मैं टीचर्स को लाइनअप करती हूँ कि वो जाकर स्कूल में एक टेस्टा हिंदी क्लास एक टर्म के लिए चलाए. तो थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, लेकिन फंडिंग भी निकालना एक काम है,
आसान काम नहीं है. ये
बिल्कुल, इसमें बहुत काम लगता है, फिर उस पर रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है.
बिल्कुल.
जहाँ
पर पैसे का सवाल होता है तो प्रत्युत्तर में प्रतिक्रिया दिखानी पड़ती है.
जी बिल्कुल,
उत्तर देना पड़ता है.
लेकिन हम खुश हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें सबको फ्रीडम है कि अपना जो अपनी संस्कृति है, भाषा है, उसको उनकी तरफ ध्यान रखना और विकास करना, ये सब फ्रीडम है.
प्रिय श्रोताओं, अच्छी बातें जब चलती है तो समय बहुत जल्दी जल्दी भागता है। आज हमने आप लोगों के सामने क्षितिज कार्यक्रम में न्यूजीलैंड और फिजी की विदुषी श्रीमती सुनीता नारायण जी को सुना और उनके अमूल्य विचारों को सुनने का हमें मौका मिला। आज का हमारा यह समय यहीं पर ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। विश्व हिंदी सचिवालय और धनराज शंभु की ओर से आपके ध्यान के लिए हम धन्यवाद कहेंगे। हमारे विशेष मेहमान श्रीमती सुनीता जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। आज के हमारे जो सहायक हैं अंजू जी, उनको भी हम नहीं भूलेंगे, उनको भी आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। प्यार भरा नमस्कार।